गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमार। कितना हो गया था, मतलब टीका चल रही, टीका पूरी हो गई थी ना, कितना हुआ? अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। यही चले, ये हो गया, इसके बाद दो पैरे हो गए, तो टीका तो खत्म हो गई। फिर दो पैरों में बाकी हैं, ठीक है। चलो पहला पढ़ लेते हैं और फिर दूसरे से अर्थ करेंगे। जीव, हाँ, हमें एक कहना है कि आज का सुबह का बहुत अच्छा था, तुम लोगों ने मेहनत करी, मेरी बात पर गंभीरता से लिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये तो मैं जानता हूं कि किसी जानबूझकर अपने आप होशियार लड़के को खड़ा किया लेकिन अच्छा है ना, इतना तो मालूम पड़ा कि एक लड़का कम से कम पूरी तरह से ग्रास्प करता है बात को। मैं तो कहता हूं कि जो कमजोर है ना, उनको इस अवसर के लिए तरसना चाहिए। उन नहीं आए उनका नंबर, क्योंकि उनकी भी बदनामी होती है, उन्हें भी डांट पड़ती है ना, यदि वो सही नहीं होता है तो वे क्यों ऐसे आपको पेश करेंगे। किसी को अवसर चाहिए तो उसे कोशिश करनी पड़ेगी, वो अपनी तरह पूरी तरह से हर एक आदमी अपनी तैयारी करे। हम नहीं चाहते हैं कि कमजोर लड़के कमजोर ही रह जाए, हम चाहते हैं कि वे भी वैसे ही होशियार बने, लेकिन हमको कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता। कमजोरी देखकर अंदर में ऐसे लगता है हम फेल हो गए, हमारी व्यवस्था में कुछ कमजोरी है, हमारे में कुछ गड़बड़ी है, कमी है, ऐसा लगता है हमें। इसलिए सबको अच्छी तरह समझना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और हम सिर्फ तुम्हारे देखने के लिए नहीं सुनते हैं, हम तो अपने लाभ के लिए सुनते हैं, हमको ही मजा आता है, हमारे ही प्रयोजन सुनने में भी, गुरुदेव का भी सुनते हैं, अपना भी सुनते हैं, क्योंकि वो विषय बार बार रिपीट होता है ना। तो इसलिए हम ऐसा कि अभी तो दो चार दिन में अभी नए नए मुर्गा बांग देता है और दो चार दिन में फिर ठंडे पड़ जाएंगे दादाजी भी, ऐसा नहीं है। हम तो हमेशा सुनते ही हैं, लेकिन हम ज्यादा उलझना नहीं चाहते, इसलिए तुम लोगों को कुछ कहते नहीं हैं। जब हमारे अंदर बहुत बहुत खटकने लगता है तब कहते हैं। अच्छा है कि आप लोग उसको वजन से लेते हैं, और अच्छा किया, अब आगे भी ऐसे ही करते रहना। देखो, जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में बरतने से दो बातें हो गई कि जीव द्रव्य है और वो जीव द्रव्य पर्यायों में बरतता है। माने बरतता है माने परिणमता है, कैसा वो पर्याय पलटती है और फिर जीव द्रव्य पलटता है कि नहीं। तो दो काम थोड़ी होते हैं, होना तो वो एक ही काम है, उसी को हम द्रव्य का पलटना कहते हैं और उसी को हम पर्याय का पलटना कहते हैं। ये ऐसी बात है कि शादी होती एक है और दिखती दो हैं। मैं दिखती दो हैं कि द्रव्य पलटा और पर्याय पलटी, जो क्रिया हुई वो हमारी समझ में आना चाहिए, वो एक ही काम है और उसी को द्रव्य की तरफ से बोलते हैं। तो द्रव्य पलटा ही कहते हैं, उसी को पर्याय की तरफ से बोलते हैं तो कहते हैं पर्याय पलटी। लड़के वाले से पूछो तो वो कहता है किसकी शादी है कि लड़के की, लड़की वाले से पूछो तो वो कहता है किसकी शादी है कि लड़की की। तो शादी किसकी है, लड़के की कि लड़की की, ये पूछने की जरूरत है? ये बिल्कुल प्रसिद्ध बात नहीं है सारे विश्व में कि जो शादी होती है तो एक लड़के और एक लड़की की होती है। तो ऐसा पूछना किसकी शादी है, लड़के की या लड़की की, ये पूछने का क्या प्रयोजन है? ऐसा मूर्खता जैसा प्रश्न नहीं लगता है? लेकिन वो सिर्फ ये नहीं पूछता है, वो ये पूछना चाहता है कि तुम्हारी तरफ से जो शादी है वो तुम लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, माने तुम्हारे लड़के की शादी है कि तुम्हारी लड़की की शादी है, यानी तुम्हारे यहां बारात आएगी कि तुम्हारे यहां से बारात जाएगी, ये जानना चाहता है। ये तो वो जानता है कि लड़के लड़की की शादी होगी, ख्याल में आई ना। तो इस तरह के इस प्रयोजन से एक एक वाक्य का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि द्रव्य प्रणमता है तो उसका कुछ अलग प्रयोजन होता है, जब हम कहते हैं पर्याय प्रणमती है तो उसका कुछ अर्थ अलग अलग प्रयोजन होता है। बात एक ही होती है, जो हमको वो वस्तु की स्थिति ख्याल में आनी चाहिए और ये भी ख्याल में आनी चाहिए कि इसको दो तरह से कहा जाता है, एक द्रव्य की तरफ से देखकर और एक पर्याय की तरफ से देखकर। ये इसलिए आना चाहिए हमारी समझ में क्योंकि जिससे कहीं भी कुछ भी कहा जाए तो हमारे को भ्रम खड़ा नहीं हो। ये जो बातें करते हैं, विवाद की बातें करते हैं कि पलटती तो पर्याय है, द्रव्य तो पलटता ही नहीं है, ऐसा कह के सामने वाले की बात काटते हैं। कोई कहता है कि नहीं पर्याय क्या, पर्याय तो पलटने का नाम है, पलटता तो द्रव्य ही है। तो दोनों को दोनों की अपेक्षाएं समझना चाहिए। ये समझना भी वैसे आसान नहीं है, फिर भी थोड़ा सरल है, लेकिन उसका प्रयोग करना तो बहुत कठिन है कि जब आप पर्याय द्रव्य पलटता है ऐसा कहते हैं तब तो आपका प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए आपकी दृष्टि में कम से कम, और पर्याय पलटती है ऐसा कहते हैं तो वहां पर हमारा प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। माने जैसे हम कहते हैं कि पर्याय पलटती है द्रव्य नहीं, तो हमें द्रव्य से पर्यायों को जुदा बताना है और बता करके जो हमारे में स्थिर तत्व है उस पर हमारी दृष्टि को केंद्रित करना है, तो ये प्रयोजन है। तो हम ऐसी दृष्टि में द्रव्यार्थिक नहीं प्रमुख होता है। और जब हम कहते हैं कि भाई ये कुछ तो हुआ ही नहीं, ये कैसे नहीं हुआ, हमने कोई परिवर्तन नहीं आया, हमने कल इतना कहा था और तुम पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्या? अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ उसको भी हम कोई परिवर्तन हुआ नहीं कहते हैं। अब कहते नहीं नहीं हो गया, एकदम बात आपने सीरियसली ली, तो उसका यह है कि अपेक्षित परिवर्तन हुआ, वो अपेक्षित से है। मतलब परिवर्तन तो प्रति समय होता ही है, जब हम त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि रखकर उसमें ही अपनापन स्थापित करके जब उसका ही ध्यान करते हैं, मान लो छपक श्रेणी में चल रहे हैं, तो उस समय भी जो जिसकी परिस्थिति जहां जैसी है वो वैसी ही रहती है। तुमने दृष्टि में से पर्याय को निकाल दिया, माने बदलने वाले मुद्दे को मुख्य नहीं रखा, तो वो बदलना बंद थोड़ी हो गया। यदि बदलना बंद हुआ होता तो अल्प ज्ञान से केवल ज्ञान कैसे होता, राग से वितरागता कैसे होती, हुई है, बदलना चालू रहा ना। आप क्या चाहते हो, बदलना चालू रहे कि नहीं रहे? इसके लिए तो सब कर ही रहे हैं, बस तुम्हारी दृष्टि में नहीं रहना चाहिए। छोटी सी बात है, साइकिल चलाने की कला क्या है, इसकी जो फिलॉसफी है इस पर 200 पेज की किताब लिखने की जरूरत नहीं है। इतना पर्याप्त है कि सीट पर बैठो, हाथ से हैंडल पकड़ो, पैरों को पैडल पर रखो और चलाओ, और जहां जहां तुम्हें जाना हो वहां मुड़ते जाओ। मैं थोड़ी तो इतनी सी है, इससे अलावा और क्या लिखा जा सकता है। लेकिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, वो ऐसा काम वो प्रैक्टिस से आएगा। अब प्रैक्टिस से आएगा तो ये तीन बातें बतानी थी ना, क्या? हाथ हैंडल पर रखना, जहां को हमें जाना है वहां को मुड़ना, पैर पैडल पर रखना और पैडलों को चलाना, और दृष्टि सड़क पर रखना, रास्ते पर रखना। तो ये जो तीनों काम हैं वो कहेंगे देखो, दृष्टि सड़क पर रखना, ना तो हैंडल देखना और ना पैडल देखना। क्या कहते हैं, नहीं कहते, नहीं तो जाके किसी से टकरा जाओगे। तो फिर पेडल का हैंडल का कुछ करना ही नहीं है क्यों? कहते नहीं, पैदल चलते रहें और दृष्टि सड़क पर रहे और हैंडल के पकड़ के रखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा जब जरूरत पड़े जहां जाना हो वहां मोड़ना, अकेले इतना ही नहीं करना, उसके लिए भी आप उस पर बैठे रहें, इसके लिए भी कभी कुछ कुछ थोड़ा बहुत उसको घुमाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है ना, क्यों? तो वो सब चीजें उसमें 24 घंटा कायम रहेंगे कि नहीं, और दृष्टि में से निकालना पड़ेगा क्या, पैडल भी और हैंडल भी, क्योंकि दृष्टि अकेले ही रोड पर होनी चाहिए। अब बहुत लोग जो नए नए सुखिए होते हैं तो सीखते वक्त जब उनसे ये कहो कि पैडल को चलाते हैं तो देखते हैं उसे, जब तुम्हें चलाना है उसमें देखना क्या है, वहां क्या देखना है, तो तुम्हारा पैर घूमेगा, आंख से नहीं देखना है, पैर से स्पर्शन इंद्री से तो आप देख ही रहे हो, मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि पैडल घूम रहा, देखना हुआ ने पता चलना, अकेले चक्षु इंद्री का उपयोग वहां नहीं करना, यही तो कह रहे हैं ना, सिर्फ चक्षु इंद्री का उपयोग नहीं करना ये कह रहे हैं। अब हैंडल को तुम्हें देखने की क्या जरूरत है, सामने देखो मुड़ना है तो ऐसा अपने आप मुड़ जाए हाथों से, लेकिन वो बैलेंस नहीं बनता है, जब सामने देखता है तो हाथ से मुड़ना रुक जाता है, हाथ से मुड़ता है तो पैर रुक जाता है, यदि वो पैर पे ध्यान नहीं देता है माने ज्ञान का गेय नहीं बनाता है तो पैदल चलता नहीं है। ये तो शुरू शुरू की बात है, आपको ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी ना बाद में, कि आपको ये देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको नींद भी आ जाएगी तो भी वो ऑटोमेटिक वो पैर चलता रहेगा, हाथ भी आवश्यकता अनुसार मुड़ते रहेंगे, तुम पूरी तरह होश में नहीं रहोगे तब भी, तो ऐसा ही ध्यान में होता है, श्रद्धा में होता है, ऐसे ही क्षपक श्रेणी में होता है। उपदेश तो यही दिया जाएगा ना कि पैडल को नहीं देखना और उसको नहीं देखना और सामने देखना, लेकिन कभी कभी पैडल दिख जाए और सामने भी दिख जाए, हैंडल भी दिख जाए तो पाप नहीं हो जाएगा, इसके लिए वहां करुणा नहीं हो खड़ा होता है कि तुम कहते हो कि जब छपक श्रेणी मारे और ऐसा ध्यान करे तो अकेला आत्मा में का ध्यान होना चाहिए और किसी के ध्यान की जरूरत रंज मात्र भी नहीं है, कहते हैं ध्यान की जरूरत नहीं है रंज मात्र भी, अपने तुम आत्मा को देखो तो बाकी के गुणों में काम कैसे होगा, कि तुम्हारे देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता जाएगा। कृषाश्रम में तो ये लिखा है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ज्ञान जाता है, तो ये परिवर्तन होगा तो तुम ये कहते हो कि पर को नहीं जानो, तो कहते होगा तो हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने उदाहरण में क्या बताया था कि तुम एक्सपर्ट हो गए हो, गाड़ी ठीक से चला रहे हो, और ऐसे में तुम्हें हैंडल दिख जाए तो दिख जाए, पैडल दिख जाए तो दिख जाए, उसे कोई तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है और गाड़ी तुम्हारी उसी रफ्तार से चलती रहेगी, लेकिन तुम उसे देखते ही मत रहना। तो उन्होंने कह दिया कि क्षण भर को यदि पर्दे पे भी ज्ञान का गेय बन गया तो कोई बात नहीं। तो रमल जी ने क्या जवाब दिया कि वो जो परिणति में शुद्धि की वृद्धि है वो अनंत गुणी कितनी होती है, असंख्य गुणी होती है, कितनी वो निरंतर हो रही ना ऊपर बढ़ने के लिए, तो उस चाल में भी फर्क नहीं पड़ता। ये कह के क्या कहना चाहती है कि वो ऐसा नेचुरल है, ऐसा हो जाना माने तुमको उद्देश्य तो नहीं बनाना है पैडल देखने का और हैंडल देखने का, लेकिन कभी दिख जाना ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसे ही तुमको पर के जानने से मोक्ष होगा क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर भी उपयोग लगा रहा है, ऐसा कहा था तो मैं तो इसको खंभे का ध्यान करूंगा, ऐसे लोग खंभे का ध्यान करते हैं, खंभे का ध्यान कौन सी बड़ी बात है, जब लोग उस भैंसे का ध्यान करते हैं कि जिसके सींग इतने लंबे चौड़े हैं कि लोग के अग्रभाग में जाके छू गए हैं, क्यों उस भैंसे का ध्यान कर सकते हैं लोग, जो भैंसा इस लोक में है ही नहीं और कभी होगा नहीं, इतना बड़ा भैंसा सिर्फ कल्पना लोक में होता है, है? लेकिन वो भी ध्यान का ध्येय बनता है ना। ऐसे ही वो कहते खंभे के ध्यान करो, तो हम कहते अब हम कहते खंभे के ध्यान से होगा मोक्ष, कर्म कटेंगे श्रेणी, तुम खंभे के ध्यान से चढ़ेगा कि आत्मा का करना पड़ेगा। देखो अब वहां का निषेध किया ना, ध्यान से सुनना, और आत्मा पर की स्थापना की। अभी इस बात वो इस बात पर अड़ जाता है कि फिर वो उसको आना ही नहीं चाहिए, वो खंभा दिखना ही नहीं चाहिए, यदि खंभा दिख जाएगा तो तेरा ध्यान भंग हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं है। क्या समझ आए? इतना शास्त्र बताया है तो फिर अध्यात्म में क्यों नहीं बता दिया, करुणानियों को क्यों बताना पड़ा इतना, कि हमारा ऐसा स्थूल कथन ही उद्देश्य है अध्यात्म का, वो सूक्ष्म कथन करुणानियों वाला करेगा। हमको ये पर का जानना इसका उपदेश नहीं देना है ना, तो हम पर जानने में आता है ये भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अपने आत्मा को जानो, अपने बुद्धिपूर्वक तुम अपने उपयोग को आत्मा पर स्थिर करो। तुम बुद्धिपूर्वक उस पर ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो राग के बिना संभव नहीं होगा। वो ज्ञान का ये बन जाए तो चलेगा। अब यही तो अपना झगड़ा होता है, बुलाना नहीं, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिणाम तो दोनों का एक ही होगा ना। नहीं नहीं सर, फर्क है, फर्क है, फर्क है, कितना बारीक अंतर जानते हैं हम। ऐसे ही इसलिए बात कहते हैं कि उसमें पर को जानने की मैं उपाधेय बुद्धि का उपदेश नहीं देना, उपदेश तो अपने आत्मा को जानने का देना, और जानने में आ जाए तो आ जान देना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहते हो वीतरागता में कमी नहीं आई, इसलिए कोई हानि नहीं हुई, और जो भी छपक श्रेणी में चढ़ने के लिए असंख्य गुणी जो निर्जरा निरंतर हो रही है, निर्जरा हो रही है माने कर्म झड़ रहे हैं, एक तो ये अर्थ होता है, और एक ये अर्थ होता है कि शुद्धि की वृद्धि हो रही है और अशुद्धि की हानि हो रही है। तो वो जो शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की हानि वैसी की वैसी चलती रहेगी, ये कह रहे हैं, कितनी चलती तो रहेगी लेकिन थोड़ी मद्दी तो पड़ जाएगी। इस स्वीकार करने में क्या तकलीफ है बोलो? क्यों? पर द्रव्य को बंध का कारण सिद्ध हो जाएगा कि हमारा पर द्रव्य जानने में आया तो हमारी शुद्धि की वृद्धि की हानि हो गई, हानि जो हो रही थी वो नहीं हो रही, आप समझेंगे ना। तो ऐसा है नहीं, वो कहते वो वीतरागता कायम रहना ये है। तो मुनि धर्म कायम रहना क्या है? कि वो शुद्धोपयोग था, शुभ भाव में आ गया तो गया, काम से नहीं गया काम से। वो जो तीन कसाई के अभाव रूप शुद्धि है, जब तक वो कायम है तो शुभ तो शुभ, ध्यान भूमिका अनुसार अशुभ में भी चला जाए, अपने शिष्य को डांटता भी हो, कभी उसकी दीक्षा भंग भी करता हो, कभी उसको कठोर से कठोर दंड देता हो, तीन दिन के उपवास करो तो भूख को मानना नहीं, तुमको एक टाइम तुम्हारा भोजन बंद कर दें तो तुमको दंड लगता क्या नहीं लगता? तो तीन दिन आहार को मत जाना, आचार्य ने एक कह दी तो मुनि महाराज को कुछ दंड नहीं लगेगा। हम तो अपने इनको कहते हैं भोजन नहीं, किसी को टोकना, भोजन के लिए नहीं टोकना, भोजन टोकना अच्छा नहीं, लेकिन हमने कहा आचार्य महाराज टोकते हैं, फायदा गलती कितनी सी बोलो, गलती कितनी सी कि जब वे आचार्य महाराज समझा रहे थे थोड़ी झपकी आ गई है, तीन दिन का भोजन बंद आहार को, इतने से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड मुनिराजों को, फिर तुम क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? तुम सोओगे तो तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेंगे, आज तक दुख किया नहीं, क्यों करें तो भी बड़ा दंड नहीं है। क्यों? क्यों मुनिराजों को देखो, 3 दिन का दे दिया था। कि वो कहते हैं कि तुम्हारा भोजन निरंतर करते रहने से वो बढ़ता है, शरीर के अंदर का वेट वेट बढ़ता है, तो उससे आलस बढ़ता है, तो उससे नींद आती है। तो वो उनने इलाज किया है, उसको क्या बोलते हैं, इलाज की, मतलब मराठी में, मराठी लोग तो यहां बहुत हैं, जब दंड देने को शिक्षा देना कहते हैं। मैं तुमको ऐसी शिक्षा दूंगा कि बेटा जिंदगी भर याद करोगे कि साहब ऐसी शिक्षा लेने के लिए तो यहां आए हैं। क्या अपना हिंदुस्तान में उत्तर भारत की दृष्टि से शिक्षा लेना क्या अर्थ होता है, और वहां शिक्षा देने का अर्थ दंड देना होता है। तो वो शिक्षा है वास्तव में, मराठी लोगों ने यही अपनाया होगा कि तुम्हारे काम में जो असली काम तुम्हारा है उसमें किसी भी तरह का प्रमाद नहीं हो, इसका दंड कह लो और चाहे इलाज कह लो, समझे ना, वो शिक्षा है, वो उनने पढ़ाया है, उसे शिक्षा दी है। क्यों? ऐसी शिक्षा दी जाती है कि 3 दिन खाना नहीं खाना है, और वो बिल्कुल बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, समझे ना। मुनिराजों में ऐसा होता है कि जो भी गलतियां उनसे हुई हों वे अपने आप जाकर आचार्य महाराज से कहें, ऐसा नहीं कि वे तो कहें नहीं और दूसरे से शिकायत करेंगे साहब इसने ये गलती की है, ये बताता नहीं है आपको, इसे बात ऐसा नहीं। यदि ऐसा करने लग जाए तो रोजीना अदालत लग जाए वहां, फिर जैसे तुम्हारे इतने से विद्यार्थियों पर 3-3 वार्डन रखना पड़ते हैं, और फिर शांति जी, फिर अन्ना जी, फिर और समझे ना, तो फिर ऐसे वहां भी करने पड़ेंगे कि इनने ये गलती की थी कि नहीं की थी, कि नहीं गवाही दो, सफाई दो, और किसी को कहना हो, ऐसा अविश्वास का वातावरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दोनों सत्य महावृत्ति हैं। क्यों? झूठ नहीं बोलेंगे, सही बोलेंगे, जानते हैं कि इसके सजा मिलेगी। हो सकता है कि बेबी तो मुनि है ना, और मुनियों के बीच में रहते हैं, तो देखते हैं कल इसको ऐसी गलती हुई थी तो इसको ये सजा मिली थी, परसों मुझे भी ऐसी मिली थी, तो अभी ऐसा अपराध हुआ है तो इतनी सजा मिल सकती है। वो सजा भी मोटी मोटी जानते हैं ना सब, जैसे वकील हैं तो जो सामने वाले का वकील है तो अपन को जो जेल भिजवाने की कोशिश करता है तो वो जानता है इस कानून में इतने वर्ष की जेल हो सकती है, ऐसा करके वो जानता है, तो उसको कोशिश करता है, समझाता है कि नहीं मिले, तो अपना वकील भी जानता है, जो अपन को बचाने की कोशिश कर रहा है वो भी जानता है कि इस कानून में यदि मैं बचा नहीं पाया, सिद्ध नहीं कर पाया कुछ, तो इसको इतनी सजा मिलेगी। दोनों जानते हैं ना। मेरे कहने का मतलब है कि आचार्य नहीं, जिसे सजा मिलनी है वे सब भी जानते हैं, तो भी बिना किसी विकल्प के वो अपनी बात आचार्य महाराज के सामने रखते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, सोचो अपना अपना, अपने आप कहने का तो जाना नहीं है, नहीं तो फिर तुम्हें मुनिराज हो जाओगे। क्यों? वो तो सवाल ही नहीं है कि हमने क्या गलती की है, और फिर वो खुद पकड़े बाइडन, हमारा पड़ोसी शिकायत करे तो पड़ोसी शत्रु हो जाता है, उसे बोलचाल बंद हो जाती है, क्योंकि तूने बता दी। वास्तव में जो खुद जाके बतानी चाहिए थी तो खुद गलती करी और पड़ोसी ने बताई तो उसे शत्रु माना, तो वो काय को तुम्हारा शत्रु बनेगा। तो तुम्हारे उतने ही चांस कम होते जाते हैं काय के, शुद्धि के, वो गलतियां निकलने के चांस कम होते जाते हैं क्या नहीं। यदि हमको मुनिराज बनना है तो हमारी वृत्ति में वैसा आना चाहिए ना, कि भाई मेरी जो गलती हुई है मैं उसे जाकर के खुद विनय पूर्वक शांति जी से कह दूं, और मैं कह दूंगा ना तो शांति जी का नेचर अच्छा, फिर माफी कर देंगे, और नहीं कहूंगा तो, और फिर पकड़ेंगे और कोई बताएगा तो वे दंड देंगे। इस भावना से नहीं कि वे माफ कर देंगे, मैं कहूंगा और वो मुझे उचित दंड देंगे, फिर कहना। मतलब पहले से ही मन में बेईमानी है कि अपन जाके कह दो, अच्छे भी बन जाओ और फिर दंड से भी बन जाओ, ऐसा नहीं। अब मुनि धर्म का स्वरूप समझ में आ गया ना क्या? अब ये कहते हैं मुनि धर्म की तैयारी क्या करें, हमें मुनि बनना है उसकी तैयारी क्या करें, जो कि नंगी होवे की तैयारी करो, रोजीना आध घंटा कपड़ा खोल करके नंगी रहा करे कमरे में, ये तैयारी है। क्या तैयारी है, क्या तैयारी करें? मुनि धर्म के ध्यान करने के लिए हमें तैयारी करनी है, तो क्या तैयारी करना चाहिए? तुम क्या सोचते हो? अभी नहीं करो तो सोचो तो कि क्या तैयारी होना चाहिए। तुम विद्वान हो ना तो तुम्हें जो हैं उनको बताना तो पड़ेगा ना, यदि कोई पूछेगा तो। आखिर पंडित आशाधर जी ने और ऐसे ऐसे विद्वान पंडितों ने मुनियों का धर्म क्या है ये भी लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या क्या होना चाहिए, हम इस बात को काय की तैयारी होना चाहिए। कोई इसकी नहीं कि हम तीन दिन का उपवास कर सकते हैं कि नहीं, इसकी नहीं कि हमें ये, इसकी होनी चाहिए कि वो रोजाना अपने गुरु के पास जाकर अपना अपराध बिल्कुल सत्य भाषा समिति पूर्वक बताना चाहिए, मेरी वृत्ति में ऐसा परिवर्तन आए, मेरी प्रवृत्ति नहीं सुधरे लेकिन वृत्ति सुधरे, जब वृत्ति में आ जाएगा तो प्रवृत्ति में भी धीरे धीरे आएगा। देखो जो आगे कह देगा बता देगा कि ये किताब किसने उठाई, हम उसको माफ कर देंगे, लेकिन नहीं बताएगा और फिर हमें पता चलेगा तो हमसे बुरा कोई दूसरा नहीं हो तो भी नहीं बताता, अवैध दान मिल गया है क्यों? ऐसा भाव आता है कि मुझे बता देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत थोड़ा दंड मिलेगा, नहीं तर उससे ज्यादा दंड मिलेगा। थोड़ा और ज्यादा क्यों? कि ये तुमने उठाई एक दंड तो इसका, और एक दूसरा उस बात को छिपाई, दूसरा दंड उसका, तो नहीं छिपाने वाला दंड नहीं मिलेगा और उठाने वाला दंड मिलेगा, तो इसमें कहां अन्याय हुआ? कि अपराध बताया, और हम तो सुना था कि आपको जो आगे कह देता है तो आप माफ कर देते हो, तो तूने तुझे तेरे दंड का प्रायश्चित हो, जो तूने अपराध किया है उसका प्रायश्चित हो, इसके लिए बताया है ना, तो दंड की स्वीकृति में तेरे को तकलीफ क्यों? ऐसी वृत्ति अंदर से पनपे तो समझना कि मेरा मुख मोक्ष की तरफ है। नहीं नहीं मुनि नहीं बना, मोक्ष तो जाना है, वो रास्ता वहीं से गुजरता है, ऐसा नहीं है कि तुम मोक्ष चला जाएगा और मुनि नहीं बनेगा, साधु नहीं बनेगा, ख्याल में आई ना? मोक्ष का रास्ता कहां से गुजरता है? मुनि में से। तो मुनियों जैसी वृत्ति तेरी पहली होना चाहिए ना। ये देखो ये टोडरमल पंडित कैसे होंगे, जिनके लिए उनकी मृत्यु के उपरांत शायद जयचंद छाबड़ा उनसे काफी छोटे थे, जब वे 22-23 वर्ष के थे तो फागी से यहां आया करते थे जयपुर में अपने व्यापार के लिए, तो पंडित टोडरमल जी का प्रवचन बड़े मंदिर में होता था तो उस प्रवचन में जाया करते थे, इतना ही संबंध उनका टोडरमल जी से रहा है ना। मेरा मतलब जब ज्यादा बड़े नहीं थे फिर भी वो लिखते हैं कि मुनिवर वृत्तिता की रही ताके माही अचल, कहां लिखा है गोमण सार की कोई ग्रंथ है, उनका सर्वासिद्धि वचन का है क्या है प्रवृत्ति, उसकी जो उनने प्रशस्ति लिखी तो उसमें टोडरमल जी का उल्लेख किया, तो ये लिखा उसमें कि उनकी वृत्ति को मैंने देखा तो जैसे मुनियों की वृत्ति होती है ऐसी वृत्ति उनकी थी, ऐसी प्रवृत्ति उनकी थी। मुनिवर बत वृत्ति रही ताके माही अचल। इससे बड़ा और सर्टिफिकेट टोडरमल जी को क्या हो सकता है, किसी को भी क्या हो सकता है। वो जानते थे जयचंद छाबड़ा उन विद्वानों में से हैं जो बहुत गहराई से किस भूमिका में कैसे भाव होते हैं इस बात को जानते हैं, समझिए ना, किस भूमिका में कैसे भाव होते हैं इस बात को बहुत गहराई से जानने वाले विद्वान थे। तो जब वो ग्रस्त थे टोडरमल जी, बाल बच्चों वाले थे, घर में रहते थे, तो उनकी को ऐसा कहना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते थे, ये हो ही नहीं सकती है। क्या क्या कह रहे, फिर लिखा माने क्या, यदि वो सामने टोडरमल जी मौजूद होते वो फिर लिखते तो कहते मंगे चापलूसी कर रहे हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे बड़े आदमी हैं। लेकिन परोक्ष में लिखा, देखो मैंने ध्यान से बोला है, तुम ध्यान से सुना के नहीं मुझे पता नहीं, उनने प्रवृत्ति नहीं लिखा, वृत्ति लिखा, समझ में आए ना, क्या समझे परमात्म, तो वृत्ति तो आएगी ना आप में पहले, तब तो आपको कोई दीक्षा देगा नहीं, दीक्षा कैसे देगा। आपकी इस गृहस्थ अवस्था में मुनिराजों जैसी प्रवृत्ति नहीं होगी तो नहीं होगी, पर वृत्ति तो आएगी, उसका अंश तो आएगा, उसकी महिमा तो आएगी, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, ऐसी भावना तो अंदर में आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। इसे बोलते हैं जादू वो है जो सिर पे चढ़कर बोले, ऐसे लोग होते हैं कि मुंह पे तो प्रशंसा करने वाले बहुत होते हैं, मैंने लिखा ना धन के 10 लक्षण में, ऐसे बहुत कम भाग्यशाली होते हैं कि जिनकी लोग पीठ पीछे भी प्रशंसा करें, वो वाक्य देखा तो ये उन भाग्यशालियों में ये टोडरमल थे, क्या उन भाग्यशालियों में थे जिनकी विद्वत्ता की, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी सद्भावना की प्रशंसा। वो करने वाला भी साधारण आदमी नहीं होता, वो भी विशिष्ट है, और जिसकी की जा रही है वो भी विशिष्ट है, समझ में आए ना। जयतन छाबड़ा भी कम महान नहीं थे, और टोडरमल जी भी कम महान नहीं थे, माने जो सदग्रस्त हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, उनकी वृत्ति तो मुनिराजों जैसी ही होती है, प्रवृत्ति नहीं होती, और जिस दिन प्रवृत्ति हो जाएगी उस दिन वे मुनिराज ही हो जाएंगे, माने उसके जीवन में आ जाना वो बात, उसी का नाम मुनिराज है, बराबर। क्या जैसे आपने कहीं देखो कि साहब आप जरा ऐसा कह देना, कि नहीं ऐसी बेस बात, जिसमें झूठी बात कहना मुझे पसंद नहीं है, नहीं तुम जो करना हो करो, मैं ऐसा नहीं कहें, जो करना हो वही बोलना, कर देंगे साहब आप जो कहोगे सो करेंगे, लेकिन अपन कर नहीं सकते हैं ना वैसा, आप जो कहेंगे वैसा हम कर नहीं सकते हैं तो कैसे कह दें। अरे करना किसको है, आप तो इसे मानना पड़ता है, काम तो ऐसे ही करना पड़ता है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना कभी कभी, लेकिन बना थोड़ी लेते हैं वो बना भी नहीं सकते हैं, बाप बनाना तेरे हाथ में है, बाप तो अपने आप बनते हैं, तो तेरे बनाए थोड़ी बनते हैं। तो ऐसा उसको ऐसी बातें पसंद नहीं आती, मेरा मतलब समझे ना, कम से कम इतनी झूठी गवाह दे देना तो उन्हें पास पसंद नहीं आती है। देखो क्या पर्यायों में बरतने से द्रव्य द्रव्य होने से और द्रव्यों का पर्यायों में बरतने से जीव बरतने से जीव नारकत्व त्रियंतत्व और मनुष्यत्व देवत्व और सिद्धत्व सिद्ध दशा भी है ना चार गतियों के अलावा पंचम गति में से किसी एक पर्याय में अवश्य मेव परिणमित होगा। माने जीव यदि कोई होगा तो ये चार गति में होगा नहीं दरअसल मोक्ष में होगा। बस ऐसा तो है ही नहीं कि वो तो कहीं नहीं था न संसार में था न मोक्ष में था ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर के भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति को छोड़ता है क्या? मैंने छोड़ ही नहीं सकता वो द्रव्यपना कैसे छोड़ देगा तो वो पर्याय नष्ट होगी बाद में तब भी वो द्रव्यपना कायम रहेगा तो पर्याय है तभी वो कायम है। उस पर्याय के जाने से आने से रहने से उस द्रव्य में कोई अंतर नहीं होता। यदि नहीं छोड़ता है तो फिर वो अन्य कैसे जो है अब प्रश्न क्या था कि अन्य है कि अनन्य कौन कौन द्रव्य और पर्याय अन्य है कि अनन्य माने मनुष्य और जीव अन्य है कि अनन्य राजस्थान और हिंदुस्तान अन्य है कि अनन्य। अब यहां कह रहे हैं कि वो अन्य कैसे हो सकता फिर वो तो एक ही रहा ना जिसे से त्रिकोटि सत्ता जिसके प्रगट है ऐसा वह जीव वही जीव ना हो क्यों ना हो मतलब ना हो माने क्यों ना हो ऊपर से ऐसे वाक्य को ढंग से पढ़ोगे तो वो क्यों ना हो अर्थ निकलेगा है ना। तो वो इसमें ये बता रहे हैं कि वो जीव ही होगा भाई जीव से अन्य कैसे हो सकता है ये तो आपको पहले मालूम ही है कि कथनचित अन्य है और कथनचित अनन्य है। वो जब इतना जोर से कह रहे हैं कि वो अन्य कैसे हो सकता है अनन्य ही है तो अब ये समझ लेना उस अपेक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी अपेक्षा को अभी गौण रखा है मतलब कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और जो ये नहीं समझेगा वो तो कहेगा कि कोई भरोसा नहीं है कभी कहते अन्य अन्य है कभी कहते अनन्य है कभी कहते अन्य कैसे हो सकता है कभी कहते हम में और आप में क्या फर्क है हम दोनों एक ही हैं कभी कहते बात क्या बात करते हो तुम हो और हम हमें इनका कोई भरोसा तो है नहीं है ना। तो जब कोई हमको काम दिगंबर सीतांबरों का मिलके करना हो और मिलके किए बिना वो काम सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होता तो उस वक्त तो हम और तुम अनन्य हैं यही समय मुख करना पड़ेगा ना उसकी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कि हमें क्या फर्क है तुम में और हम में यही तो है ना। तुम भी महावीर को मानते हो हम भी महावीर को मानते हो चौबीस दिनों को मानते तुम भी मानते हो तुम भी सात तत्व मानते हो क्षेत्र भी मानते हो वो सारे मुद्दे उठाए खड़े कर देंगे क्यों। और जब काट नहीं हो किसी को संबंध हमें रखना ही नहीं है तो क्या बात करते हो। टोरमल जी ने उसमें अजेनियों में डाला है पांच में अध्याय में लिया है श्वेत पटवानों को उनको मुख्य करो तो हम तो दोनों चीजें हैं ना हमारे यहां और उनके नियम है और उन्होंने बताई भी कि मौके मौके पे दोनों को मुख्य करना ये बात भी झूठ नहीं है। क्या वो जैन धर्म को नहीं मानते वे सात तत्व तो नहीं मानते क्या वो छह द्रव्य नहीं मानते कि द्रव्यगुण पर्याय नहीं मानते हैं कि चार गतियां नहीं मानते हैं ये बहुत फंडामेंटल ऐसे हैं कि वो सब मानते हैं। और जिन बातों में अंतर है वो अंतर भी है न वो अंतर खत्म हो जाएगा और न वो जो एकता के जो सूत्र हैं न वे खत्म हो जाएंगे। अब बस इतना ही है वो बैलेंस बिगड़ना और बैलेंस संभलना बस इतना सा फर्क है। देखो मैं अब बोलता हूं कि ये जो तत्वज्ञान पूज्य गुरुदेव के माध्यम से अपने को मिला। अपन को तो कोई ऐसा ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि अपन तो उसी परंपरा में, दिगंबर परंपरा में, शुद्ध तीर्थ पंथामनाय परंपरा में थे, जिसको गुरुदेव ने सत्य कहा और उसको कहा, तो हमको तो कुछ भी परिवर्तन नहीं करना पड़ा है? हम अपने गांव में लौट के आए तो गांव वाले भले ही हमारे चाहे तो माने कि अभी सही नहीं है, क्यों हमारी किताब मंदिर में नहीं रखने देंगे, लेकिन मंदिर में आने से तो नहीं रोक सकते, हमको प्रचन स्वाध्याय करने से तो नहीं रोक सकते, पूजन करने से तो नहीं रोक सकते, कोई संकट खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उन गुरुदेव को तो हो गया, संकट खड़ा हो गया, क्यों कि उनके वो थानक में कैसे जाएं, उनसे कैसे व्यवहार करें, उनसे क्या करें, मेरे कहने का इतना बड़ा खड़ा हो गया व्यवहार। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो तत्व ज्ञान भाग्य से अपने को मिल गया है, तो ये सब दिगंबरों को मिलना चाहिए कि नहीं? क्या होना चाहिए बोलो, क्यों करो, क्या मिलना चाहिए? श्वेतांबरों को मिलना चाहिए कि नहीं? थानक वासियों को मिलना चाहिए कि नहीं? श्रीमद वालों को मिलना चाहिए कि नहीं? तो मिलना चाहिए तो ऐसे मिलेगा कि उनको आते ही श्वेतांबर मत को गाली दोगे, उनको गाली दोगे, क्यों तो मिलेगा? यदि जो उसमें कमी है तो जब वो प्रकरण आए तब सहज भाव से, बहुत वितराग भाव से और सावधानी पूर्वक समझा देना। 24 घंटे उसको मुख रखने की जरूरत नहीं है ना, गौण करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? यदि सचमुच ये बात अच्छी, ये बात बुरी है, छोटी है, मिथ्यात्व है, क्या है बोलो है? अच्छा अब नहीं है, सही है बिल्कुल बात। तो क्या हम उस श्वेतांबरत्व का समर्थन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। देखो दोनों बातों में कितनी मजबूती है, हम अपनी जगह 100% पक्के हैं, हम बिल्कुल हिलेंगे नहीं, और तुमको हमारी बात अच्छी लगती है समझना है तो समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और ये इस बात को बहुत उससे सहजता से निभाया जा सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं बहुत छोटा उदाहरण कि अमेरिका में ये पद्धति है, दिगंबर श्वेतांबरों के मंदिर एक साथ हैं और 2-3 मूर्तियां श्वेतांबरों की रखी रहती हैं, एक दिगंबरों की रखी रहती है, ऐसा करके साथ में है एक कोने में, क्योंकि दिगंबरों की संख्या बहुत कम है, मतलब वे हैं यदि 100 तो दिगंबर हैं 10, इतनी कम है। देखो समझना इस बात को, तो वे तो नहीं, दिगंबरों की एक मूर्ति भी नहीं रखे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और दिगंबर 10 में एक है, लेकिन वो वे 10 रुपया दें तो 1 रुपया भी देना नहीं चाहते। क्या क्या कह रहा हूं मैं? तो कैसे कहा उनकी, हमारी 1 उनकी 3, अरे 3 उनने 10 गुना खर्च किया है, 10 गुने लोग हैं, वो तो बोट से होगी ना वहां तो, लेकिन तुम भी वहां दर्शन पूजा कर सकते हो, बिना दर्शन पूजन के रहो तुम अपना अलग मंदिर तो बना ही नहीं सकते हो, जहां 2 घर हैं 3 घर हैं तो अंदर मना ही नहीं, बनाओगे तो चला नहीं सकते, आगे जाके बैठोगे तो कोई तुम्हारे यहां आएगा नहीं, तुम किसी को बुला नहीं सकोगे विद्वान को, वैसे ही मंदिर बन गया, उसी झाड़ू लगाने तुम्हारे हाथ आएगी, क्या करें? अब मैं आपसे बोलता हूं कि वहां क्या पद्धति है कि जैसे हमारी सभा हुई तो उसके पहले वे लोग आरती करेंगे मंदिर में जाके, और आरती की बोली लगाएंगे, मुझे घी का दीवा ऐसा कुछ बोलते हैं, मंगल दीवा और आरती, वो की बोली लगाते हैं, और बोली लेता है जो आदमी रोजाना, वो आरती करता है, फिर मंगल दीवा करता है, फिर वो एक कर लेता है, फिर सबको देते हैं। तो अपन तो पंडित हैं तो अपन को तो सबसे पहले देंगे ना, तो पहले दिन से धर्म संकट खड़ा हो गया, प्रवचन तो बाद में सुनेंगे है? और दिगंबर मूर्ति भी है, वहां श्वेतांबर भी है। अब क्या करो, या तो दिगंबर मूर्ति की उपेक्षा करो, श्वेतांबर अब कैसे नक्की होगा कि ये हमारी आरती दिगंबर को पहुंच रही है श्वेतांबर को नहीं। थोड़ी थोड़ी दूर हो तो हम फर्क डाल भी सकते, अब एक ही वेदी में दोनों रखी है, अब हमें ऐसा नमस्कार कर ले तो हम अपने चित्त में ही बाइफरकेशन कर सकते हैं क्या, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने आज तक वो आरती नहीं की। एक आदमी ने तो हमारे लिए बोली ले ली, हमारे लिए कहा कि साहब आपके लिए ली है, नहीं मुझे बोली नहीं लेनी थी। ये है ना गोसलिया, क्या नाम है उसका, रजनी भाई गोसलिया, सबसे पहले गए तो मेरे बहुत भगत थे, अभी भी हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने बोली ले ली। अब मेरे को गए आप आरती करो, अब वे मोक्ष थे, वो नहीं समझते थे इतना, सोनगढ़ में होती थी तो आज भी होने लगी, फिर वो उसकी होने लगी, फिर यही होने लगी। ज्यादा मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतनी बात सुनो कि मैंने आरती नहीं करता ना घी की ना उसकी कोई, फिर मेरे से लोग आगे कहते हैं कि हम तो आपको सम्मान करना चाहते हैं। तो आप, मैं कहता भाई हमारे टोडरमल जी स्मारक भवन में आरती नहीं होती, टोडरमल जी के जो मंदिर हैं तो जहां उनकी आमनाएं चलती है वहां आरती, जो कहते हैं गुरुदेव की तो करते हैं, तो उनको सबको मालूम है गुजराती लोग हैं, वो गुरुदेव की वहां चलती है। अब कितना कठिन काम है पर मैडम, लेकिन हम कहते हैं हमारे यहां नहीं होती। बहुत प्रेम से शांति से समझा देते हैं, समझे ना, या तो वहां खड़े रहते हैं नहीं तो बाहर आगे घूमने लगते हैं। हमको कोई आदमी से रंज मात्र भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और सब लोग हमारी तत्व की बात सुनते हैं। ऐसा नहीं कि अगली साल इनको नहीं बुलाना इस पंडित को, ऐसा नहीं। अब बोलो ये तत्व की बात सुनते हैं और सुनते सुनते धीरे धीरे जैसे आप में परिवर्तन होता है तो उनमें भी परिवर्तन होता है, वे भी तत्व की गहराई को समझने लगते हैं तो वे उनको उनसे वंचित कर दें। आप उनके सीतांबर में जाते, आप सीतांबर हो गया, अब हम तो क्या कहें, सीतांबर भी सुनते हैं प्रेम से तो जाते हैं सुनाते हैं, तो हम नहीं सुनेंगे, मत सुनो तुम, क्या करें। हम जो सुनते हैं प्रेम से उन्हें नहीं सुनाएं, और जो प्रेम से नहीं सुनते हैं क्यों, उनको सुनाने के लिए हम क्यों उनको बंद करें, बोलो क्या उचित है। अच्छा वो तुम्हारा कोई हमें डर भी नहीं है ना, यदि उनको नहीं सुनाएंगे तो वे दिगंबर नहीं बनेंगे, तुम्हें नहीं सुनाएंगे तो तुम तो जैसे बने हो दिगंबर, वैसे दिगंबर बने ही रहने वाले हो, तुम जाके सीतांबर तो होने वाले हो नहीं। जैसे हो माने जीरो, कुछ नहीं समझते हो, बस हो मैं दिगंबर हूं कदम ऐसे है, तो इससे तो महाभ्रष्ट होने वाले हो नहीं। तो मैं कहता हूं कोई आदमी ये धक्का मत आना मैं गिर जाऊंगा, कैसे गिर जाएंगे, वो कहे गिरने की बात कि जो छत पे खड़ा हूं तो छत पे से नीचे गिर सकता है ना, लेकिन कोई नीचे भी खड़ा है तो वो कहे मैं गिर जाऊंगा, लेकिन जो लेटा है वो कहां गिर जाएगा, यदि वो कुएं के किनारे पर लेटा हो तो कुएं में गिर सकता है, समझना मेरी बात पूरी जाग दें, लेकिन कोई जाके कुएं के अंदर और खाली कुआ हो तो उसमें जाके लेट गया हो, वो चिल्लाए रोए कि धक्का मत मार देना गिर जाऊंगा, तू गिर के कहां जाएगा है? तू कुएं में पड़ा है और लेटा है, ऐसी पोजीशन में है तो तेरे भ्रष्ट होने का कोई डर नहीं है, और वे जहां हैं वहां से सत्य धर्म को समझ सकते हैं, जो समझ सकते हैं हम उनको सुनाएंगे, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन हम पे उनने कोई शर्त नहीं लगाई आज तक कि तुम आरती करोगे कि नहीं, हमारे सीतांबर पूजन में करोगे कि नहीं, ये नहीं करोगे कि नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं लगा। माने मेरे कहने का मतलब ये है, यदि तुम कसाय भाव नहीं रखो तो रास्ता निकलता है। एक बात और मैं मार्मिक बताना चाहता हूं, एले में मंदिर बना, सीतामढ़ी ने रखा, दिगंबर मूर्ति उन्होंने नहीं रखी। विशाल उनका बहुमत था, कोशिश भी करी दिगंबरों ने, लेकिन नहीं रखी उन्होंने। अब मेरा प्रवचन होता तो ये सब सीतांबर लोग आते और दिगंबर कम आते, और वे कोई मैं पाठ भी इनमें नहीं लेते, तो वे मेरे से जो अध्यक्ष बने, एक नए बने थे, तो कौन मणि भाई के साले बने थे, पहले मणि भाई थे, हाँ सुमित भाई, मणि भाई डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, और उनके साले बने उनके अध्यक्ष थे। तो उन्हें हमें घर पर बुलाया भोजन के लिए, और उन्हें निवेदन किया कि हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप दिगंबरों से ये को मंदिर में लाने की कोशिश करो, उन्हें प्रेरणा दो कि वे मंदिर में आया करें, हर काम में शामिल हुआ करें। मतलब दिगंबर समाज से क्यों कटते हैं, समाज में तो रहें। अरे भाई हम श्वेतांबर लोग हैं, तो हम अंग्रेजों जैसे तो नहीं है, मुसलमानों जैसे तो नहीं है, उनको आप प्रेरणा दो। वो अध्यक्ष थे समाज के, उनने ही हमें बुलाया था, बोलो हमने उनको कहा कि हम उनको किस मुंह से प्रेरणा दें, हम उनसे कहें कि तुम मंदिर में आओ, तो वे हमसे कहेंगे कि तुम हमें सीतांबर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम सीतांबरों ने तुम्हें खरीद लिया है, तुम उनके एजेंट हो, कि तुम हमको सीतांबर मंदिर में जाने के लिए कहते हो, क्या जवाब देंगे हम? हम अपील कर सकते हैं, एक शर्त है कि पहले तुम मंदिर में दिगंबर मूर्ति रखो। क्या दिगंबर मूर्ति रखो, उसमें पैसा भी उन्हीं का लगा था पूरा। अब हम ये अपराध कर रहे हैं, हम दिगंबर मूर्ति रखवा रहे और दिगंबर आए भाग लें, ये हमारा ही प्रवचन सुनने नहीं आते, अपने घर में करा लेंगे, उन्हें ऐसा नहीं कि हमारा पसंद नहीं है, बहुत पसंद है लेकिन नहीं आएंगे। तुम मूर्ति रखो तो फिर हम अपील करेंगे, और कोई बात मत करो कि तुम्हारी इसमें ये करना पड़ेगा, उन्हें अपने तरीके से पूजा पाठ करने दो, सब उनको जो उनकी पद्धतियां हैं वो उनको निभाने दो, फिर हम आपको उनको समझाएंगे, और फिर ये कहेंगे कि भाई तुम लोग बना सकते हो अलग तो बना लो, और नहीं बना सकते हो तो तब तक इस मंदिर में रख के मूर्ति हो, मंदिर में आना जाना करो, समाज से तो जुड़े रहना चाहिए ना। तत्काल तो उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आखिरकार फिर मंदिर का 2-3 वर्ष बाद ही बहुत बड़ा एक्सटेंशन हुआ, द्वारा सब टूटा, फिर वेदियां बनी, उसमें फिर वेदी बनी जिसमें दिगंबर मूर्तियां रखी गई, और अब दिगंबर भाग लेने लग गए। अब हम जाते हैं तो बोलकर दिगंबर मूर्तियों के पास जाते हैं, वहां आप नमस्कार करते हैं, पूजन वो जो भी करते हैं, हम तो करते नहीं पूजन, वहां समाज वाले करते हैं, तो हम भी खड़े रहते हैं, तुम हमें बुला ले गए थे तो हम वहां भी खड़े थे, नहीं तो नीचे से ही सुनते हैं, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए ना। और वो लेकिन हमने आज तक सीतांबर मूर्ति को नमस्कार नहीं किया, जब हम जानते हैं कैसे बन रहा, टीवी पे जाएगा सब सीतांबर सुनेंगी, कोई छिपी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब कोई छिपी बात नहीं है, तो भी हमको किसी ने भी हमारी बात प्रचन होने में बाधा खड़ी नहीं की, किसी ने अरुचि नहीं बताई। बोलो अब उन्हें हम तत्व समझाएं कि नहीं समझाएं, जिन लोगों को सारी जिंदगी हम तत्व समझाते रहे, उनके बाप को समझाया, उन्हें समझाया, उनके दादा को समझाया, और बाल बच्चे होंगे तो उन्हें भी समझाएंगे, और वे पूज गुरुदेव जिनके नाम पर वे उनके भगत हैं, उनके दिल को जीता, समझे ना, उनसे भी सर्टिफिकेट पाया, और इन मूर्खों को अब भी हम में शंका है, हमारे सामने शर्तें रखते हैं कि तुम कहां खड़े हो, कहां बैठो, कितने करो, ऐसे रहो ऐसे रहो, तो हम मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे, हमें क्या जरूरत है मूर्खों की, चार मूर्ख नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी कहीं नहीं कहूंगा, विद्यार्थियों को इसलिए बता रहा हूं कि तुमको ये सारी रीति नीति पता होना चाहिए, नहीं तुम्हें भी भड़काएंगे, तुम भी भड़कने में आओगे। हमने क्या लिया उनके पास जाके बोला कि हमने वे हमें कौन सा राज तिलक कर देंगे? उनसे क्या हमने कोई लौकिक अपेक्षा लेने की कोशिश की? कोई जो व्यवहार नम्र रहे, वे गांव गांव में जाकर के मुमुक्षुओं का विरोध नहीं करें, तो ये मुमुक्षुओं के हित का काम किया, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो जो विरोधी से विरोधी है ना, हम वहां गए तो भी हमारा सम्मान करते हैं, साल उड़ाते हैं, मालाएं डालते हैं, हमें हमारी कोई समस्या नहीं है। शांति जी, अभी मैं कुंडलपुर गया था ना दर्शन करने, हम लोग किसी से कुछ कहा नहीं था, बस गाड़ी से जाके दर्शन करने गया था, तो वहां के जो अध्यक्ष मंत्री थे वहां थे, तो उनने देख लिया, ऐसे जानते नहीं थे ज्यादा, मतलब पहचान ले मैं दूर से, तो दूसरों से पूछा ये कौन है ये कौन है, उन्होंने कहा ये वो है, तो आए पीछे पड़े, फिर लेके हमें साल उड़ाया, सम्मान किया बहुत। अब तो अपन तो उस पक्ष के हैं ही नहीं जिस पक्ष के भी हैं, क्या है कभी? तो हमारी समस्या नहीं है कि हम अपने सम्मान के लिए कुछ ये करते हैं, हमने तो किसी को नहीं बुलाया था ना, लेकिन हम वहां गए थे यात्रा संघ में, जो यात्रा संघ में यहां होंगे सब कैलाश जी थे मेरे ख्याल से, उधर गए थे ना अपन इंदौर के पास में, वो कौन सा है तीर्थ, कौन सी गिरी, पुष्पगिरी, तो पुष्पगिरी में दर्शन करके हम सब लोग निकल गए और हम 10 किलोमीटर आगे बढ़ गए, फिर उन्होंने महाराज वहां थे, उन्हें पता चला कि ये यहां आए थे डॉक्टर भारेल और उनके साथ यात्री थे और वो निकल गए, मिल नहीं पाए, तो उनने हमको बुलवाया, पीछे पड़े गाड़ियां दौड़ाई, आदमियों को भेजा, उनने हमसे कहा कि सब महाराज याद कर रहे, बोलो क्या करें, 10 किलोमीटर से गए मिले, बहुत प्रेम से बात किया, सबको स्वागत कराया, माला जो एक बताओ ना तो कहते कि अच्छा था इनको मालाएं मिल गई तो खुश हो गए। अरे हम मालाएं मिल गई नहीं, ये मालाओं की इतनी कमी नहीं है, इतनी मालाएं पड़ी हैं कि अब तुमको कल्पना नहीं कर सकते, इस भव में तुम्हें पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी हमें नहीं पता। क्या मतलब उन्हें बहुत सत्कार सम्मान से मिले, ये पुलक सागर भी मिले, सब लोग मिले, उनने हमें पंच कल्याण का भी निमंत्रण दिया, हम जाए नहीं जा पाए, यहां भी दिया था निमंत्रण तुम्हें मालूम पंच कल्याण में आने का, प्रवचन करने का, लेकिन हम नहीं गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे लोग तत्व की बात सुनना चाहते उन्हें सुनाएं कि नहीं सुनाएं, उन्हें भगा दें, उनसे बात नहीं करें, उनकी तरफ देखें नहीं, देखते ही वहां पाप हो जाता है, मिथ्यात हो जाता है। जानते क्या हैं जी, कुछ नहीं जानते, काला अक्षर भैंस बराबर है, हमने सारी जिंदगी लगाई है, ये मिथ्यात्व किसे कहते हैं ये हमें बताएंगे कि आप जवाब क्यों नहीं दे, क्या जवाब दें, किसको जवाब दें, है जवाब देने लायक कोई है इसको जवाब दें? ऐसा इक्का दुक्का कोई भी किसी भी गली में कुछ भी बोलने लगे तो उसे हम जवाब देते फिरेंगे क्या? हमें कोई जवाब ममाब की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे को अपने चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए। मेरा मतलब इसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई हम अपनी बात पर 100% कायम रहकर मूल तत्व ज्ञान पर अपना रंच मात्र भी समझौता किए बिना अपनी श्रद्धा के साथ हम सारे जगत तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। मुसलमानों को सुनाना तो वहां भी सुनाएंगे, एक दफे गए भी थे, समय तो हो गया लेकिन सुनू, मेरे पास यहां इसी ऑफिस में यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट आए और उनने कहा कि हमारे युवकों का एक संगठन है और उस संगठन में हम आपका भाषण कराना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का संगठन, तो भाषण करने तो ठीक है भाई, हमने उन्हें मंजूरी दे दी तो हम गए। तो हम अपना पानी तो साथ में ले ही जाते हैं, कहीं 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 प्यास म्यास लगेगी तो अपना पानी पिए, उनके और नहीं लेना पड़े। वहां जाके देखा तो इससे बड़ा हॉल था, वो सब मुसलमान ही मुसलमान बैठे थे, सब बुजुर्ग टाइप के और जो मुसलमान ड्रेस में खचाखच। और स्टेज पर भी हमारे बगल में जो आकर के बैठे वे प्रोफेसर लोग थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन वे भी मुसलमान थे, वो टोपी वो भी लगा इधर ही बैठे इधर भी बैठे तो याद यहां पर बहुत गलत जगह आ गए ऐसा फीलिंग हुआ। लेकिन वो लोग जो भाषण दिया उन लोगों ने मुसलमानों ने, उनने इतना बढ़िया भाषण दिए, इतने संस्कार की बात की, हमारे घरों में ये टीवी घुस गया है, इसने ये बर्बाद कर दिया है, हमारे बच्चों को संस्कार नहीं रहे हैं, ये नहीं रहे हैं, जैसे मन कहते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, पाठशालाएं हमारी बर्बाद कर दी हैं। उन्होंने वो सब बातें उनके लिए दी, उपदेश में दी, जो अपन देते हैं 99% गुरु। तो मैं तो समझ रहा था कि ये तो इतने अच्छे लोग हैं, क्या समझ रहे हैं तुम्हारे कि ये इतने अच्छे लोग हैं, इतनी सात्विक वृत्ति वाले हैं, ये तो टीवी नहीं देखना चाहते हैं, सिनेमा देखने को मना करते हैं, और ये कह रहे थे कि देखो उसमें नंगी नंगी औरतें नाचती हैं, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, इसकी प्रतिज्ञा लेना चाहिए, ये ऐसी बातें बता रहे थे। वो एक दो ने नहीं, कम से कम 5-6 व्याख्यान हुए होंगे मेरे पैसे, और वे सब यहां प्रोफेसर हैं, यहां इंजीनियर यहां हैं, यहां ऐसे लोग थे। फिर मेरा भी भाषण हुआ, मैंने भी एक घंटा जो अपना विषय बोलना था बोला, और मैं लेकिन मुसलमानों के प्रति जो मेरा मतलब मैं विचार था उसमें बहुत परिवर्तन आया, ख्याल में आया ना। अब एक खतरनाक बात कह देता हूं, एक मिनट की, बाद में मुझे पता चला कि वो ही संगठन था, वो जो सिमी संगठन नाम सुना होगा तुमने, जिसके वे विद्यालय चलते हैं और जिसको बंद किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने उसे प्रतिबंधित किया, जैसे इनका आरएसएस होता है वैसा उनका वो संगठन था, और ये सब आतंकवादी उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो ले जाते हैं और करते हैं, वो था। मैं ये बताना चाहता हूं उस सिमी संगठन के बारे में, जब गवर्नमेंट ने कार्रवाई करी तो मुझे विकल्प आया कि ये लोग तो हमने देखा जीते ऐसे लोग हैं, आप समझ रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा लौकिक ज्ञान कितना कमजोर है, अपन लोग भी हैं ना, अपन कितने शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले तत्व ज्ञान की रुचि वाले लोग हैं, और यही चर्चा अपन अभी करते हैं। अब ऐसे में 10-5 जैनी कहीं पकड़े जाए, मुमुक्षु भी पकड़े जाए, और उनको उन्होंने कोई आर्थिक अपराध किए हों, क्या बताएं कितने करते हैं, समझिए ना, तो फिर अपन लोग खराब हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, उन पर प्रतिबंध होगा, वे जेल में जाएंगे, 4-6 लोग जेल में चले गए, अपन भी बदनाम तो होंगे ही ना, पर बदनाम तो होंगे ही ना, क्योंकि वो ही पैसे वाले होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा होता है तो वे लाला के दान में भी देते हैं, जिनके पास ऐसा पैसा होता है तो वो मुखिया भी बने रहते हैं, उनको माला भी अपन पहनाते हैं, ऐसा अपन करते हैं, ऐसे उनके यहां भी होता होगा। वे जो जितने भी स्मगलर होंगे ना, उनमें भेजा जाकर के उसको पैसा देते होंगे, वे पढ़ाते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता लोग जो हैं वो सभी मतलब उस स्तर के नहीं हैं, और वो उस स्तर की बातें भी अपनी समाज में नहीं सिखाते। तो मैंने ये सोचा कि अपन को भी ऐसे ही समझा जा सकता है, दुग्ध कलारन हाथ लख मद समझें सब ताई। हमने कभी जाना नहीं कि ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, कितने 2 नंबर का क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, आप समझ रहे ना, क्या करते हैं, हमने जाना नहीं। हम तो अपने यही वकील को अपनी पासबुक दे देते हैं, जो बना देता है, जितना टैक्स लगाने की बोलता है उतना टैक्स भर देते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं। अब लेकिन सब चारों तरफ लोग ऐसे घिरे हुए हैं कि जिनने क्या नहीं किया मैं क्या बताऊंगा। अभी अपन कल स्टेज पर बैठेंगे तो सब चारों तरफ बैठेंगे, अपन भी बैठेंगे उसमें, कोई अपन को भी वैसा ही समझेगा तो उसकी क्या गलती है। लेकिन अभी ऐसे ही जगत में रहकर हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है महाभाग्य से, तो और जगत का कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन अपना जीवन तो सार्थक करना ही चाहिए। इसके लिए क्या करें, अपनी वृत्ति ऐसी बनाओ कि किसी जयचन छाबड़ा को लिखना पड़े कि मुनिवर वृत्ति वृत्ति रही ताके माही अचल। पांच पापों में प्रवृत्ति नहीं हो, जो अपने जो चरणान योग की बातें हैं ना, तो अहिंसा महावेद सत्य महावेद अनुवेद नहीं लो, ऐसे कोई व्रत नहीं लो, तो भी इसका मतलब हमको हिंसा करने चाहे जैसी हिंसा करने का वो हमको वृत्ति तो नहीं होनी चाहिए, हमारी वृत्ति तो अहिंसक होनी चाहिए कि नहीं। रतनगण साहब का चार में पांच अनुव्रतों को आठ मूल गुणों में शामिल किया है, मालूम तुम लोगों को, मध्य मास मधु त्यागी सहानुभूति संचकम, है ना, तो वो अनुवृत्त तो हमारे होनी चाहिए, आठ मूल गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों तुम दादा, तो अहिंसा अनुवृत्त तो होना चाहिए ना, वो अनुवृत्त नाम दिया उन्हें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो दूसरी प्रतिमा वाले अनुवृत्त होते हैं वो बिल्कुल निरतिचार होते हैं, और ये जो सामान्य हैं जिन्हें अहिंसा के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा, आचार्य के अचौरी के प्रति निष्ठा, ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा, माने वहां ब्रह्मचर्यानुवृत्त जाकर के दूसरी प्रतिमा में आएगा, तो उसके नीचे वाले सब परिस्थिति सेवन वेश्या सेवन करते फिरें, क्या उन सब लोगों को भी एकदम शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए ना, है क्या हमारी तरफ कोई एक महिला भी झांके तो उसको हमसे कोई ऐसा भय ऐसा वैसा नहीं लगे, एकदम वातावरण हमारी वृत्ति इतनी निर्मल और पवित्र होनी चाहिए, ये वो हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। अब जगत तो जैसा होएगा होएगा, हम उसकी परवाह नहीं करें और अपनी वृत्ति को निर्मल रखें, एक दफे जब कोई ऐसी बात आए तो बस देख लें, भाई जी कह रहा है सामने वाला, ऐसा दोष अपने में है तो नहीं, दिखे तो छोड़ दें, नहीं दिखे तो बस खत्म, जो जाने वो जाने।
शुद्ध सर